नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं फरहत नाज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज सिविल सेवकों की क्षमता विकास को बढ़ावा देने के लिए साधना सप्ताह 2026 का शुभारंभ किया। एक वीडियो संदेश में प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत चाहता है कि देश तेजी से आर्थिक विकास करे।
21वीं सदी के इस कालखंड में तेजी से बदलती व्यवस्थाएं, तेजी से बदलती दुनिया और उनके बीच उसी रफ्तार से आगे बढ़ता हमारा भारत, इसके लिए पब्लिक सर्विस को समय के अनुरूप निरंतर अपडेट करना जरूरी है। कर्मयोगी साधना सप्ताह उसी प्रयास की एक अहम कड़ी है।
साधना सप्ताह का उद्देश्य सिविल सेवकों की क्षमता, प्रदर्शन और दक्षता में सुधार करना है। केंद्रीय मंत्रालयों, विभागों, संगठनों और राज्यों के सभी स्तरों के कर्मचारी और अधिकारी इसमें IGOT प्लेटफॉर्म और अन्य माध्यमों से भाग लेंगे। प्रधानमंत्री ने कल विभिन्न मंत्रालयों और विभागों के कार्यक्रमों की समीक्षा करने और पश्चिम एशिया में चल रहे संघर्ष से संबंधित पहल पर विचार विमर्श करने के लिए सुरक्षा संबंधी कैबिनेट समिति CCS की विशेष बैठक की अध्यक्षता की। एक रिपोर्ट।
बैठक के दौरान प्रधानमंत्री ने आम आदमी के लिए आवश्यक वस्तुओं की उपलब्धता का आकलन किया। उन्होंने देश में उर्वरकों की उपलब्धता और खरीफ तथा रबी फसलों के दौरान इसकी उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए उठाए जा रहे कदमों पर भी चर्चा की। प्रधानमंत्री ने यह भी निर्देश दिया कि चल रहे संघर्ष के प्रभाव से नागरिकों को बचाने के लिए हर संभव प्रयास किया जाए। बैठक के दौरान कृषि, उर्वरक, जहाजरानी, विमानन, रसद और लघु और मध्यम उद्यमों MSME में उभरती चुनौतियों से निपटने के लिए किए जाने वाले कार्यों पर भी चर्चा की गई। आदित्य प्रताप सिंह, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशों के अनुसार मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण SIR के अंतर्गत विचाराधीन सूची से जिन मतदाताओं के नाम हटा दिए गए हैं उनके मामलों की सुनवाई के लिए अपीलीय न्यायाधिकरण आज से कार्यवाही शुरू करेंगे। ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों माध्यमों से प्रस्तुत सभी आवेदन, दस्तावेज और जानकारी न्यायाधिकरणों को उनके निर्णय हेतु उपलब्ध कराई जाएगी। कल SIR से संबंधित मामले की सुनवाई के दौरान मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जयमाले बागची तथा विपुल पंचोली की पीठ ने ये निर्देश जारी किया। मामले की अगली सुनवाई 6 अप्रैल को निर्धारित की गई है। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण की अधिसूचना आज जारी की जाएगी। इस चरण में 142 विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों में 29 अप्रैल को वोट डाले जाएंगे। इसके साथ ही इस चरण के लिए नामांकन भरने की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। उम्मीदवार 9 अप्रैल तक पर्चे भर सकते हैं। अगले दिन नामांकन पत्रों की जांच होगी और 13 अप्रैल तक नाम वापस लिए जा सकते हैं। संसद का बजट सत्र आज समाप्त हो रहा है। राज्यसभा में आज आंध्र प्रदेश पुनर्गठन संशोधन विधेयक 2026 पर चर्चा हो रही है। बजट सत्र का पहला चरण 28 जनवरी से 13 फरवरी तक हुआ था। दूसरे चरण में संसद ने वित्त विधेयक 2026 और विनियोग संख्या 2 विधेयक 2026 को मंजूरी दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस दौरान संसद के दोनों सदनों में पश्चिम एशिया संघर्ष से उत्पन्न स्थिति पर सरकार का पक्ष रखा था। सरकार ने पश्चिम एशिया संघर्ष और इसके कारण दुनिया भर में कच्चे तेल की आपूर्ति में आई बाधाओं के बीच 30 जून तक महत्वपूर्ण पेट्रोकेमिकल उत्पादों पर सीमा शुल्क में छूट दी है। वित्त मंत्रालय ने कहा है कि ये उपाय घरेलू उद्योगों में आवश्यक पेट्रोकेमिकल की उपलब्धता सुनिश्चित कराने के लिए अस्थायी रूप में लिया गया है। मंत्रालय ने कहा कि इससे संबंधित क्षेत्रों पर लागत का दबाव कम होगा और आपूर्ति में स्थिरता आएगी और उपभोक्ताओं को राहत मिलेगी। मंत्रालय ने कहा कि कुल 40 वस्तुओं पर सीमा शुल्क में छूट दी गई है। इनमें मेथनॉल, अमोनिया, टोल्यून, स्टायरिन, डाइक्लोरोमेथेन और विनाइल क्लोराइड मोनोमर शामिल है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि अमेरिका ईरान में अपने प्रमुख रणनीतिक लक्ष्य प्राप्त करने के करीब है और अमेरिकी सेना जल्द ही अपना काम पूरा कर लेगी। व्हाइट हाउस से प्रसारित अपने 20 मिनट के संबोधन में श्री ट्रंप ने अमरीकी मिशन ऑपरेशन एपिक फ्यूरी की सफलता का उल्लेख करते हुए कहा कि अमरीका पहले से कहीं अधिक बड़ी जीत हासिल कर रहा है। राष्ट्रपति ने वायदा किया कि जब युद्ध समाप्त होगा तो अमरीका पहले से कहीं अधिक सुरक्षित, मजबूत और महान होगा। पश्चिमी एशिया में जारी संघर्ष के मद्देनजर शेयर बाजार का संवेदी सूचकांक आज भारी गिरावट के साथ खुला। प्रमुख शेयर सूचकांकों में 1% से अधिक की गिरावट दर्ज की गई। देश के विभिन्न हिस्सों में आज हनुमान जन्मोत्सव पूरी श्रद्धा के साथ मनाया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला और गृहमंत्री अमित शाह ने इस अवसर पर देशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं दी हैं। इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।